नमस्कार भारत, आज है 22 जून दिन गुरुवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। इस्लामिक स्टेट ने इराक के मोसुल शहर में ऐतिहासिक अल नूरी मस्जिद को उड़ाया। राष्ट्रपति चुनाव में रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दल आज करेंगे चर्चा।
कई नाम हमारे पास आए थे, उन नामों की चर्चा कर रहे हैं। हम देश के राष्ट्रपति के चुनाव को संकीर्ण जातिगत सीमाओं में बांटना नहीं चाहते।
नकल के लिए चर्चा में रहे बिहार में एक दौर ऐसा भी था जब सरकार ने ही करवाई नकल। और दुनिया जहान में होगी चर्चा कि उत्तर कोरिया ने किसकी मदद से हासिल की परमाणु ताकत।
नॉर्थ कोरिया के पास अपनी कुछ तो क्षमता थी और बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत ड्राइंग और थोड़ा बहुत मदद जो है जैसा बताया जाता है वो पाकिस्तान से लेके अपना अणु बम तैयार किया।
मगर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। इराक और अमरीकी सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने मोसुल में अल नूरी मस्जिद को उड़ा दिया है। ये वही मस्जिद है जहां इस संगठन के नेता अबू बकर अल बगदादी ने 3 साल पहले खिलाफत का ऐलान किया था, जबकि इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि ये मस्जिद एक अमरीकी लड़ाकू विमान के हमले में नष्ट हुई। आसमान से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि मस्जिद का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है और मीनारें भी गिर गई हैं। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आब्दी ने कहा है कि मस्जिद ढहाकर इस्लामिक स्टेट ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकने के लिए चीन पर और कोशिशें करने का दबाव बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने वॉशिंगटन में अपने चीनी समकक्षों से मुलाकात की। इसके बाद विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु गतिविधियों से पूरी तरह मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन उस क्षेत्र में तनाव का खात्मा चाहता है तो उत्तर कोरिया पर और दबाव बनाना उसकी राजनयिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, हमने चीन से कहा है कि अगर वो इस क्षेत्र में और अस्थिरता फैलने से रोकना चाहते हैं तो उस हुकूमत पर बड़े आर्थिक और राजनयिक दबाव बनाना उनकी कूटनीतिक जिम्मेदारी है। चाहे वह काले धन को सफेद बनाना हो, वसूली करना हो या संदिग्ध साइबर गतिविधियां हो, उत्तर कोरिया कई आपराधिक व्यवसायों में लगा है और इसके जरिए हथियार विकसित करने का पैसा जुटा रहा है। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के शब्द। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी ने कहा है कि ब्रिटिश राजशाही का कोई भी वारिस अपनी मर्जी से ताजपोशी नहीं चाहता। अमरीकी पत्रिका न्यूज़वीक से बात करते हुए प्रिंस ने कहा कि क्या शाही परिवार में कोई है जो राजा या रानी बनना चाहता हो, मुझे नहीं लगता। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद समय आने पर वे अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया है। उनके 4 मंत्रियों ने अपने खिलाफ आरोप लगने के बाद पद छोड़ दिए थे। कानून के प्रोफेसर निकोल बेलुबत अब फ्रांसवा बेयहू की जगह न्याय मंत्री होंगे। 3 हफ्ते पहले ही बेयहू सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को फिर से स्थापित करने से जुड़ा एक बिल लेकर आए थे। उनकी मोदेम पार्टी पर आरोप है कि उसने यूरोपीय संसद का वेतन फ्रांस में अपने कार्यकर्ताओं को बांटा। इस पर फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एदुआर्द फिलिप ने कहा, फ्रांसवा बेहू चरित्र वाले आदमी हैं और रहेंगे, कभी चिढ़ पैदा करने वाले और अक्सर आकर्षक, जो कहते हैं कि बातों को सुना जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो बहुमत वाली सरकार से अत्यधिक काम की अपेक्षा रखने वाले सहयोगी साबित होंगे। इसके उलट मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये थे फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एदुआर्द फिलिप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस मेनेम के बेटे के अवशेष उनकी मौत के 12 साल बाद खोदकर निकाले गए हैं। एक जज ने उनकी मौत की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। 26 वर्षीय कार्लितोस उर्फ मेनेम जूनियर की मौत उस वक्त हो गई थी जब 2002 में वह विमान उड़ा रहे थे और एक उच्च वोल्टेज तारों में उलझकर उनका विमान हादसे का शिकार हो गया था। हालांकि उनकी माँ इसे एक चरमपंथी हमला मानती थी। उनका कहना है कि उनके बेटे को शायद गोली मार दी गई थी और कब्र में उनका शरीर बदल दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति मेनेम ने शुरुआत में जांच के नतीजे को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब वह हिजबुल्ला को अपने बेटे की हत्या का आरोपी मानते हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर इराक के मोसुल शहर की एक पहचान रही है मस्जिद अल नूरी। इस्लाम में भव्यता के हिसाब से इसका नाम मक्का, मदीना, यरूशलम की अल अक्सा और दमिश्क की उम्मैद मस्जिदों के साथ लिया जाता है। मोसुल शहर पिछले 3 साल से खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले जिहादियों के हाथ में है। 2014 में शहर पर कब्जे के बाद इसी मस्जिद से इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी ने खिलाफत का ऐलान किया था। और कल रात खबर आई कि इस्लामिक स्टेट ने लगभग 850 साल पुरानी अल नूरी मस्जिद को उड़ा डाला। पूरे ब्यौरे के साथ कुलदीप मिश्र।
इराक और अमरीकी सेना का कहना है कि खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले गुट ने मोसुल में अल नूरी मस्जिद को उड़ा दिया है। हालांकि आईएस ने दावा किया है कि ये मस्जिद एक अमरीकी लड़ाकू विमान के हमले में नष्ट हुई, मगर अमरीकी सेना ने इससे इनकार किया है। इस जगह की ऊपर से ली गई एरियल तस्वीरों से पता चलता है कि मस्जिद परिसर का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया है। मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ाने के लिए बढ़ रही इराकी सेना के कमांडर मेजर जनरल जोसेफ मार्टिन ने बीबीसी को बताया कि उनके सैनिक मस्जिद से 50 मीटर दूर थे जब आईएस ने एक और ऐतिहासिक अपराध कर डाला। उन्होंने कहा कि ये एक और उदाहरण है कि क्यों इस असभ्य संगठन को खत्म करना जरूरी है। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अब्दी ने कहा है कि मस्जिद को उड़ाना दर्शाता है कि इस्लामिक स्टेट हार मान चुका है। अल-नूरी मस्जिद का निर्माण सन 1172 में शुरू हुआ था। इसके कुछ हिस्से और उसकी झुकी मीनारें वहां सैकड़ों वर्षों से खड़ी थीं। इस्लामिक स्टेट ने जून 2014 में मोसुल पर कब्जा कर लिया था। इसके एक महीने बाद जुमे को इस्लामिक स्टेट के नेता बगदादी अल-नूरी मस्जिद से नजर आए। वो एकमात्र मौका था जब बगदादी को सार्वजनिक रूप से देखा गया। उन्होंने वहीं से खड़े होकर खिलाफत का ऐलान किया, एक ऐसा राज्य जो इस्लामिक शरिया कानून से चलता है, जिसे धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि यानी खलीफा चलाता है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी अभियान में हजारों इराकी सुरक्षाकर्मी, कुर्द पशमरगा लड़ाके, सुन्नी अरब कबायली और शिया सेना लड़ रहे हैं, जिन्हें अमरीका की अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन हवाई सहयोग और सैन्य परामर्श दे रहा है। ये अभियान 17 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। इराक सरकार ने जनवरी 2017 में मोसुल को पूरी तरह से आज़ाद करा लेने की घोषणा की थी, मगर शहर के पश्चिमी हिस्से में लड़ाई काफ़ी कठिन साबित हो रही है, जहां रास्ते काफ़ी सकरे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि आईएस ने संभवतः वहां 1 लाख लोगों को रोका हुआ है, जिन्हें वो मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब रुख भारत का। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने रामनाथ कोविंद को जब से अपना उम्मीदवार बनाया है, विपक्ष लगातार बिखरता नजर आ रहा है। विपक्ष को एक और झटका कल लगा जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भी रामनाथ कोविंद का समर्थन कर दिया। उनकी पार्टी आज दिल्ली में कांग्रेस, वाम दलों और विपक्षी पार्टियों की बैठक में भी शामिल नहीं होगी। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी।
जनता दल यूनाइटेड ने आगामी राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान श्री रामनाथ कोविंद जी को समर्थन देने का फैसला किया। उनका कार्यकाल बेहतरीन कार्यकाल के रूप में जाना गया है।
मगर बिहार में नीतीश सरकार में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने अभी उम्मीदवारी को लेकर मन नहीं बनाया है।
22 तारीख को बैठक है, कल बैठक में जो निर्णय होगा वो हम लोग करेंगे, जो फैसला लेंगे लोग उस फैसला के साथ।
अच्छा, नीतीश जी ने जो कहा है कि
अब हम नहीं सुने नीतीश जी क्या बोले।
अच्छा ठीक। कुछ ऐसी ही बात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने भी कही।
विपक्षी दलों की बैठक है और उस बैठक के बाद राय मशवरा करके जो भी रणनीति तैयार होगी वो रणनीति आपके समक्ष रख दी जाएगी।
मगर वामपंथी दलों का रुख स्पष्ट है, एनडीए के उम्मीदवार को चुनौती जरूर देनी चाहिए। मगर नीतीश कुमार के एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने से क्या विपक्ष की कोशिश कमजोर नहीं हुई है? हमारे सहयोगी फैसल मोहम्मद अली ने यही पूछा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के नेता अतुल कुमार अंजान से।
निश्चित रूप से कल तक जो सारे अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में सबसे आगे बढ़ करके अपनी बात कह रहे थे, विपक्ष की एकता के पुरोधा बन रहे थे, इससे एक क्षति तो हुई है। और हमें ये मालूम था श्री मोदी जी विभिन्न पार्टियों के अंदर तोड़फोड़ की कार्रवाई करके अपने बहुमत के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। उन्होंने AIDMK में प्रयास किया, तोड़फोड़ की, और लगातार इस विपक्ष में भी उन्होंने हाथ मारने की कोशिश की। और बिहार की राजनीति में इसी वक्त पर लालू जी की बेटी के खिलाफ कार्रवाई, बेटों के खिलाफ कार्रवाई, ये सब कार्रवाई एक सुनियोजित सोच का हिस्सा है और इसके पीछे खंड विखंड इसकी राजनीति के वो माहिर हैं।
अतुल जी, वो तो ठीक है, लेकिन अपोजिशन यूनिटी को तो क्षति पहुंची। अब वो क्या करेगी एक अपना जो एक साझा कैंडिडेट ढूंढने के मामले को लेकर?
अभी कोई मतलब मैं ये नहीं समझता कि रह जाता। विपक्ष विपक्ष है और विपक्ष को निश्चित रूप से एक बैठक करके अपने एक साझा उम्मीदवार हम खड़ा करेंगे। कई नाम हमारे पास आए थे, उन नामों की चर्चा कर रहे हैं। हम देश के राष्ट्रपति के चुनाव को संकीर्ण जातिगत सीमाओं में बांधना नहीं चाहते थे, लेकिन धन्य हो NDA, राष्ट्रपति सिर्फ मात्र राष्ट्रपति नहीं है, सांसद और विधायकों द्वारा चुना, भारत के सेना का सर्वोच्च कमांडर है। उससे भी अगर हम जातिगत बाड़ों में बांध करके सह और मात का खेल खेलेंगे, ये कौन सा राष्ट्रवाद है?
तो अभी भी आपको लगता है कि अपोजिशन की बैठक होने वाली थी, वो होगी?
निश्चित होगी और निश्चित लड़ना चाहिए और अब विपक्ष को उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को सत्तारूढ़ दल ने सारी परंपराओं को तोड़ करके खत्म किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, वह राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी दल के नेताओं को बुलाकर बात करते थे। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी दूसरों के, उनके पास समय है प्रियंका चोपड़ा से फ्रांस में मिलकर बात करने की, लेकिन भारत के विपक्ष के नेताओं से बात करना, वह समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को की मर्यादाओं को धूल धूसरित कर देगा, इसलिए उन्होंने बात करना उचित नहीं समझा।
तो आपको लगता है कि अब जो कैंडिडेट की बात कर रहे थे आप, उसमें कोई ऐसा नाम है? क्योंकि शरद पवार का नाम पहले लिया जा रहा था, मीरा कुमार का नाम आ रहा था, सुशील कुमार शिंदे का, ये सब नाम है आप लोगों के सामने चर्चा में या कोई और भी नाम?
बहुत सारे नाम चर्चा में है, और भी नाम चर्चा में है। कुछ लोग प्रकाश अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं, कुछ लोगों ने स्वामी अग्निवेश जी का भी नाम रख दिया है। बहुत से नाम है जिनका क्रेडेंशियल, जिनकी सोच, जिनकी समझ भारतीय समाज के बारे में बहुत साफ है, संविधान में उनकी जमकर आस्था है और धार्मिक संकीर्णताओं में वो कभी फंसे नहीं है।
CPI नेता अतुल कुमार अंजान। और अब समय हो चला है आज के अखबारों पर नज़र डालने का। कुलदीप मिश्र के हाथ में है आज के अखबार, और अखबारों में जो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कुलदीप, राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा सभी अखबारों।
बिल्कुल, राष्ट्रपति चुनाव का मसला सब जगह छाया हुआ है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो NDA उम्मीदवार रामनाथ गोविंद को समर्थन है वो ज़्यादातर अखबारों ने शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, कोविंद पर नीतीश विपक्ष से दूर, राजग के साथ। अमर उजाला ने भी इसे विपक्ष को करारा झटका बताया है, और इस मुद्दे पर नीतीश के बिहार में सहयोगी RJD प्रमुख लालू यादव से अलग राह लेने को रेखांकित किया है कि लालू और नीतीश के बीच में भी एक पहली बार इस किस्म से मतभेद हो सकते हैं सामने आए। इंडियन एक्सप्रेस ने एक शीर्षक लिखा है कि विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस मीरा कुमार का नाम बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि वाम दल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रकाश अंबेडकर उनके रिश्तेदार उनको उतार सकती हैं, जो कि अभी अतुल अंजान हम सुन भी रहे थे कि वो कह रहे थे। एक्सप्रेस ने ही एक दिलचस्प तस्वीर पहले पन्ने पर छापी है। ये तस्वीर उस मौके की है जब राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे थे। तो एक समय ऐसी सुगबुगाहटें थीं कि आडवाणी ही हो सकता है NDA के उम्मीदवार हों, तो कल वो मुलाकात हुई तो उसकी तस्वीर है। इसके अलावा योग दिवस छाया हुआ है पहले पन्ने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग करते हुए अलग अलग मिजाज की तस्वीरें अलग अलग अखबारों ने छापी हैं।
वज्रासन में बैठे हुए हैं,
बिल्कुल अखबार में कोई अलग अलग आसन में बैठे हुए हैं। एक इंडियन एक्सप्रेस ने ही खबर छापी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष गयोरुल हसन रिजवी का बयान है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को सीमा पार करके पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वरना उन्हें वहां भेज दिया जाना चाहिए। ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का बयान है
और विवाद इस पर
विवाद हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक बढ़िया इन्फोग्राफिक्स के जरिए यह बताया है कि अनिल कुंबले का बतौर कोच कार्यकाल कैसा रहा। तो उन्होंने जॉन राइट और गैरी कस्टन दो पूर्व कोचों से तुलना की है और बताया है कि कितने फीसदी टेस्ट मैच इनके समय में जीते गए। तो टेस्ट मैचों के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार कुंबले के समय में हुआ, वनडे में भी अच्छा प्रदर्शन रहा। हिंदुस्तान टाइम्स ने कर्नाटक में किसानों की 8100 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। ये मुझे कई अखबारों में पहले पन्ने पर यह खबर नहीं मिली, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है। अमर उजाला और हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर एक और खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी की सड़कों पर गंदगी के मसले पर दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है। तो ये भी एक खबर, उन्होंने कहा है कि मच्छरों को पनपने देना।
हाँ, और बारिश का समय है यहाँ पर, तो गंदगी को लेकर खास चिंता है अभी। धन्यवाद कुलदीप अखबारों की समीक्षा के लिए। और चर्चा बिहार की, जहां कुछ समय से लगातार नकल की खबरें, कुछ वर्षों से लगातार परीक्षा में चोरियों की खबरें आती रही हैं, वहां इन चोरियों की खबरें तो आई, खबरें उनकी काफ़ी कही निकल कर आई, उन पर काफ़ी चर्चा भी हुई, विवाद भी हुई, लेकिन बिहार में चोरी की जो कहानी है वह कोई नई नहीं है। वहाँ एक ऐसा भी दौर था जब सरकारी संरक्षण में बतौर एक राजनीतिक हथियार इम्तिहानों में चोरी करवाई गई। ऐसा वक्त था संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय का, जो 1974-75 की बात है। कैसे उस वक्त नकल बनी राजनीतिक हथियार और क्यों, पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
बिहार इंटरमीडिएट के नतीजे इस बार भी चर्चा में रहे। इस बार इंटर में करीब 8 लाख छात्र फेल रहे हैं। बीते महीने 30 मई को नतीजे जारी करते हुए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने जोर देकर कहा था कि परीक्षा में नकल रोकने के कारण ऐसे परिणाम सामने आए हैं। लेकिन इसी बिहार ने एक ऐसा भी दौर देखा था जब सरकारी संरक्षण में इम्तिहान में चोरी कराई गई। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974-75 में इंटर की परीक्षा भी विश्वविद्यालय स्तर पर होती थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए छात्रों से एक साल मांगा था। इसका एक मतलब परीक्षा बहिष्कार भी था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी भी तब बतौर छात्र नेता इस आंदोलन में शामिल हुए थे। उस दौर को सुशील कुछ इस तरह याद करते हैं।
सरकार ने अपने स्तर पर नकल करवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन लड़कों ने ही उसको एक तरह से नकार दिया। कुछ लड़के थे जिन्होंने इसका लाभ उठाया। आंदोलन को तोड़ने के लिए एक जमाने में और नकल के हथियार का इस्तेमाल हुआ।
माना जाता है कि नकल की छूट का मौका देने का फैसला राज्य सरकार का नहीं था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हर हाल में संपूर्ण क्रांति आंदोलन को असफल करवाना चाहती थी, लेकिन बिहार के पूर्व मंत्री और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर श्याम सुंदर सिंह सरकारी संरक्षण में नकल कराए जाने को सिरे से खारिज करते हैं।
तो उस आंदोलन में ये बात सही है कि जब जयप्रकाश जी ने छात्रों को आह्वान किया कि स्कूल कॉलेज छोड़ दो, तो पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों की बड़ी कमी हो गई क्लास, लेकिन एग्जाम में भी हुई, लेकिन कहीं भी चोरी नहीं हुई।
जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का गठन किया था। चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी भी आंदोलन के दौरान इससे जुड़े और 80 के दशक में वाहिनी के बिहार संयोजक भी रहे। तब जिस अंदाज में परीक्षा हो रही थी उसके बारे में वे बताते हैं।
पूरे बिहार में जो स्टूडेंट थे, जो पते लिखवाते थे, उनको पुलिस जीप में परीक्षा केंद्र पर लाया जाता था। उनको सारे कॉपी किताब प्रोवाइड किए जाते थे।
मौके का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में उम्रदराज लोग परीक्षाओं में शामिल हुए। इनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा थी। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद याद करते हैं।
सारी कम्युनिटी, मिडिल क्लास कम्युनिटी की जिन तीन महिलाएं नहीं पढ़ी हुई थी, चोरी में 35 साल 40 साल की औरतें अपने बेटों के साथ, बेटियों के साथ मैट्रिक एग्ज़ाम दी, चोरी हुई, डकैती हुई जिसको कहिए, और कुछ तो अच्छे खासी बीएड कर ली, बीएड कर ली, टीचर बनी, नौकरी मिली। तो ये एक अजीब और गरीब सोशल फेनोमेना था।
हालांकि जेपी आंदोलन में शामिल रहे लोगों का कहना है कि इस सरकारी छूट का आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
और आज है गुरुवार और आज वक्त होता है दुनिया जहान का। उत्तर कोरिया लंबे समय से मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगा है। अमरीका चाहता है कि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करे। पश्चिमी देश उस पर लगातार प्रतिबंध और कड़े करते जा रहे हैं, लेकिन इन सब से बेपरवाह उत्तर कोरिया अपने काम में जुटा हुआ है। सवाल ये है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार कैसे हासिल कर लिए। दुनिया जहान में मोहनलाल शर्मा इसी की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान
मानिल 미국이 무모한 도발을 걸어온다면 우리 혁명 무력은 즉시 선멸적인 타격을 가할 것이며
उत्तर कोरिया ने इस साल दो बड़े सैन्य प्रदर्शन, कई मिसाइल परीक्षण और परमाणु परीक्षणों का दावा करके दुनिया के सामने अपनी बढ़ती ताकत दिखाई और कहा कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने जापानी सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था,
नॉर्थ कोरिया इज द मोस्ट डेंजरस एंड अर्जेंट थ्रेट टू द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द एशियन पैसिफिक।
एशिया प्रशांत की शांति के लिए उत्तर कोरिया खतरा है। किसी भी हमले, चाहे वो परमाणु हमला ही क्यों न हो, हमें उसे हराना होगा।
दरअसल उत्तर कोरिया के बम बनाने की तकनीक हासिल करने की कहानी इतिहास के पन्नों में छुपी है। इसे जानने के लिए हमें अक्टूबर 1950 में जाना होगा।
And now, let's go back to October 1950. This is war.
उस वक्त कोरियाई युद्ध शुरू हुआ था। इसमें लाखों लोगों की जान गई। इस युद्ध के बाद ही उत्तर कोरिया को लगने लगा कि उसके पास परमाणु हथियार होने चाहिए। उत्तर कोरिया को लगता था कि अमेरिका उसके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। कोरियाई युद्ध खत्म होने के बाद उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करना शुरू किया। उसने इसे पहले बिजली उत्पादन से जोड़ा और इसके लिए उसने अपने कम्युनिस्ट सहयोगियों से मदद ली। उत्तर कोरिया को ये मदद मिली सोवियत संघ से। विशेषज्ञ कहते हैं अगर यूरेनियम से बिजली पैदा करने की प्रणाली विकसित कर ली जाए तो हथियार तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। 1990 में सोवियत संघ के टूटने के बाद उत्तर कोरिया ने नए दोस्त की तलाश शुरू की और उसे ये दोस्त मिला पाकिस्तान के रूप में। दोनों देशों के बीच डील हुई, लेकिन इसके दो चेहरे थे, एक आधिकारिक और एक रहस्य से भरा गोपनीय। रिटायर्ड ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान पाकिस्तान में आर्म्स कंट्रोल के तत्कालीन डायरेक्टर थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बीबीसी से कहा,
इट वॉज अ स्टेट टू स्टेट डील बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान फॉर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान।
उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के बीच लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के समझौते हुए। दोनों देशों के बीच आधिकारिक समझौता हुआ कि उनके वैज्ञानिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करेंगे और गोपनीय समझौता था कि पाकिस्तान उत्तर कोरिया की मदद परमाणु हथियार बनाने में करेगा।
द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बाय अलाउइंग एक्यूखान लैब टू गेट इन विद प्योंगयांग अलाउड प्योंगयांग टू गेट इनटू द एक्यूखान नेटवर्क।
इस तरह से उत्तर कोरिया ने मिसाइल विकसित करने में पाकिस्तान की मदद की और पाकिस्तानी वैज्ञानिक अब्दुल कदीर खान के रिसर्च सेंटर ने उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार विकसित करने में।
पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने का श्रेय कदीर खान को ही दिया जाता है। कदीर खान पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच ये संबंध तब सामने आया जब इस्लामाबाद में एक वैज्ञानिक की पत्नी की मौत हो गई और उनके परिवार को सामान समेत प्योंगयांग वापस भेज दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद दुनिया भर के देश ये सवाल उठाने लगे कि पाकिस्तान में उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं। इन सवालों का जवाब आसान नहीं था। ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान,
जब भी हम एक्यू खान से उत्तर कोरिया के लोगों को वापस भेजने की बात कहते थे, वो उसे टाल देते थे और कहते थे कि उन्हें कुछ और महीनों का वक्त दे।
एक्यू खान वुड कम बैक एंड से, सर जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मोर मंथ्स।
सालों बाद अब्दुल कदीर खान का नेटवर्क दुनिया के सामने आ गया। ये वो नेटवर्क था जो उत्तर कोरिया के साथ साथ अन्य देशों को परमाणु तकनीक मुहैया करा रहा था। 2004 में अब्दुल कदीर खान ने लीबिया, उत्तर कोरिया और ईरान को परमाणु जानकारियां देने की बात स्वीकार करी और माफी मांगी।
माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई हैव चोजन टू अपीयर बिफोर यू टू ऑफर माय डीपेस्ट रिग्रेट्स एंड अनक्वालिफाइड अपोलॉजीज।
हालांकि बाद में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें क्षमादान दे दिया। उसके बाद से उन्होंने अपने कई बयानों में कहा कि उन पर लगे आरोप गलत थे और उनसे जबरन परमाणु जानकारी बेचने की बात मनवाई गई थी। लेकिन ये वही एक्यू खान थे जिन्हें पाकिस्तान में नेशनल हीरो माना जाता है। 1990 के अंत तक उत्तर कोरिया को जो चाहिए था उसने हासिल कर लिया, यानी यूरेनियम संवर्धन की तकनीक, और यही तकनीक परमाणु बम बनाने के लिए काम आने वाली थी। पर परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसके लिए सिर्फ यूरेनियम संवर्धन की तकनीक ही नहीं, बहुत सारे उपकरण भी चाहिए, जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन, ब्लोअर वगैरह वगैरह। ये सारे उपकरण तो उत्तर कोरिया खुद बना नहीं सकता था, और परमाणु कार्यक्रम के लिए विदेशों से सामान आयात करने पर उस पर प्रतिबंध लगे हुए थे। तो उत्तर कोरिया ने इन सब को हासिल करने के लिए कई रास्ते खोजे। उसे वो रास्ता मिला चीन से। अंतर्राष्ट्रीय हथियार निरीक्षक डेविड ओब्रायन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड सिक्योरिटी के संस्थापक हैं।
It's been very easy for North Korea to recruit a Chinese company.
उत्तर कोरिया ने चीन में कंपनियों को अपना एजेंट बना लिया। इन कंपनियों ने ग्राहक बनकर स्थानीय जरूरतों के लिए मशीनों का आयात किया और फिर ये सामान व्यापार की आड़ में उत्तर कोरिया पहुंचता रहा।
And China doesn't do border checks in any meaningful way.
दुनिया भर के बाजारों से सामान हासिल करने के बाद अब उत्तर कोरिया को एक ही काम करना था, उन्हें जोड़कर परमाणु बम बनाना। लेकिन अगर तकनीक के साथ साथ आपने सब कुछ दुनिया भर से जुटा भी लिया तो भी बम बनाना आसान नहीं। इसके लिए उसके वैज्ञानिक जुटे थे। विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला कहते हैं,
डॉक्टर ए क्यू खान का जो एक न्यूक्लियर वॉलमार्ट जिसको कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रेड का जो उन्होंने क्लैंडेस्टाइन नेटवर्क चला रखा था, उसके बीच में उन्होंने जो आपस में खरीद फरोख की, उसकी मदद से जरूर कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया ने अपना अणु बम बनाने में क्षमता प्राप्त की। लेकिन जितनी भी आप किसी से मदद ले लो, आपके पास अगर अपने वैज्ञानिक और इंजीनियर नहीं हो तो अणु बम पूरी तरह से बनाना पॉसिबल नहीं है। नॉर्थ कोरिया के पास अपनी कुछ तो क्षमता थी, उनके पास एक अपना छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर था जिससे उनके पास प्लूटोनियम था, और बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत ड्राइंग और थोड़ा बहुत मदद जो है, जैसा बताया जाता है, वो पाकिस्तान से लेके अपना अणु बम तैयार किया।
आखिरकार उत्तर कोरिया ने परमाणु बम बना लिए, परीक्षण किए। ये वही परमाणु बम हैं जिनके बल पर उत्तर कोरिया दुनिया को आंखें दिखाता है। तो कितने परमाणु बम हैं उसके पास? अंतर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद के रिसर्च फेलो राहुल मिश्रा।
इंटरनेशनल कम्युनिटी ये नहीं जानती है कि उत्तरी कोरिया के पास वाकई में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और कितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एक रफ एस्टिमेट जो सिपरी ने निकाला है, उनका कहना है कि अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियर बॉम्ब्स उत्तरी कोरिया बनाता है, 5 किलो का एक बॉम्ब के हिसाब से उनके पास ज्यादा से ज्यादा 8 बॉम्ब्स वो बना सकते हैं। उनके पास बहुत कुछ नहीं है जो कि एक कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर के पास होना चाहिए।
जहां एक ओर उत्तर कोरिया परमाणु शक्ति से लैस हो चुका है, साथ ही वो लगातार मिसाइलों का भी परीक्षण कर रहा है, दुनिया भी उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध और कड़े करती जा रही है ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम का विस्तार न कर सके। लेकिन क्या आज की स्थिति में उत्तर कोरिया किसी देश पर बम गिरा सकने की स्थिति में है? पल्लव बागला।
देखिए, जो अणु बम उनके पास है, जैसा बताया जाता है, वो अभी काफी भारी है, और उसको आप या तो एयरक्राफ्ट से डिलीवर कर सकते हैं या मिसाइल से डिलीवर कर सकते हैं। तो अभी वो लगे हैं कि अणु बम को हल्का किया जाए और ऐसे सक्षम मिसाइल बनाए जाएं जिससे कि वो दुश्मन देश पे छोड़ा जा सके। उनके ऊपर बहुत सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी डिनायल लगी हुई है, लेकिन उनके ऐसा नहीं कि दोस्त नहीं है। चाइना और पाकिस्तान उत्तर कोरिया के काफी दोस्त हैं और उनसे उनको मदद मिलती रहती है।
शायद यही वजह है कि तमाम पाबंदियों के बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगातार आगे बढ़ता रहा है और अमेरिका व दुनिया की दूसरी ताकतों को ठेंगा दिखाता रहा है। मोहनलाल शर्मा, BBC।
और सभा समाप्ति से पहले मुख्य समाचार।
BBC समाचार। इराक और अमरीकी सेना का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों ने मोसुल में अल नूरी मस्जिद को उड़ा दिया है। ये वही मस्जिद है जहां इस संगठन के नेता अबू बकर अल बगदादी ने 3 साल पहले खिलाफत का ऐलान किया था। अमरीका ने उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकने के लिए चीन पर और कोशिशें करने का दबाव बनाया है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन और रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने वाशिंगटन में अपने चीनी समकक्षों से इस सिलसिले में मुलाकात की। ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी ने कहा है कि ब्रिटिश राजशाही का कोई भी वारिस अपनी मर्जी से ताजपोशी नहीं चाहता। अमरीकी पत्रिका न्यूजवीक से बात करते हुए प्रिंस ने कहा कि क्या शाही परिवार में कोई है जो राजा या रानी बनना चाहता हो? मुझे नहीं लगता। BBC समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही ये सभा अब समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होंगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com, जहां आप दुनिया भर की खबरें और उनका विश्लेषण देख पढ़ और सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।